इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसी तरफ में आपको लाना चाह रही हूँ, कुरान में क्या फरमा रहा है और उन पर से अहकाम के संगीन बोझ और कैदोबंद को उठा देता है और जो लोग इस पर ईमान लाए, इसका एहतराम किया, इसकी इमदाद की, इस नूर का इतबा किया। यानी देखिए, इंसानियत जंजीरों में जकड़ी हुई थी। इंसानियत जो थी वो ख्यालात की दुनिया में कैद थी। रसूल अल्लाह ने उन्हें उन बहमो गुमान और ख्यालात पर सुंदर रस्म और रिवाज से निकाला और उन जंजीरों को तोड़ दिया। आप देखिए, अभी सिस्टर मोनी ने अपनी जो टॉपिक था उसमें कहा था कि हम ये देखें कि रसूल के जमाने में जो कुछ हो रहा था वो आज हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस माशरे में रसूल जिंदगी गुजार रहे थे वो बहुत बुरा माशरा था। जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं हम ये समझते हैं बहुत बुरा माशरा है, हर बिंदु। मगर हम अभी भी देखते हैं कि लोग रस्म और रिवाज की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। लोग जो है वो फरसूदा ख्यालात की जंजीरों में जकड़े हुए थे। रसूल अल्लाह ने इंसानियत के सरों से ये बोझ उठाए। अब आप यूं समझिएगा कि बोझ रखा हुआ था, कोई गोली रख दी थी वो उठा दी, नहीं। इस बोझ से मुराद है माती बोझ नहीं। माती बोझ तो हम भी आप भी हटा सकते हैं, किसी के सर पर किताब रख दें हम भी हटा के उठा सकते हैं। मानवी बोझ को हटाना जो उनके किरदारों के ऊपर ढका हुआ था। जैसे कहा कि वो लोग ऐसी ऐसी फरसूदा रिवायात के शिकार थे कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, तो उनको इस मानवीय जंजीरों को सिर्फ मानवीय जो कार्यकार है, जो असलाह है, वही हटा सकता है, वही तोड़ सकता है। और रसूल का मुआवजा है, उस जमाने में इंसानियत जिन बोझों के तले दबी हुई थी, रसूल ने उन्हें उन बोझों से निजात दी, रसूल ने उन्हें बोझों से आजादी अदा करवाई। और इंसानियत ने जब वो आजादी अदा हासिल की है तो वो उस मकाम पर पहुंच गई कि लोग हैरान शक्त हो जाए, वो बुलंद बुलंद मकाम हासिल किए। अजीजान गिरामी, दूसरा कार्य रचना क्या है? सबसे पहले अपनी जात के अंदर से तमाम चीजों को निकाल दें। देखिए, बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयतों की वजह से मैं इस बात को कह रही हूँ कि हम लोग बहुत सारी जंजीरों में दबे हुए हैं। आबाओ अजदाद की जंजीरों में, रस्म और रिवाज की जंजीरों में, इज्जत की जंजीरों में। लोग क्या कहेंगे, मैंने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा। इन जंजीरों को तोड़ दें। और सिर्फ सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था सिस्टर सिद्दीक फातिमा का, इखलास। इखलास कुर्बतन इल्लल्लाह अपने अंदर पैदा कीजिए और सिर्फ खुदा की खुशनूदी को मद्देनजर रखिए। जो काम आप कर रही है वो परवरदिगार आलम की खुशनूदी के लिए। ये सरकार देखिए मोहम्मद वाली अब देखिए, एक काम जो कुरान बता रहा है उस पर हसना के तौर पर वो क्या फरमा रहा है? सूरह अनफाल 46 में फरमा रहा है कि वातिल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ाउ वला फतफशलु वतलहबा रियुमत बिनल्लाह मास्ताबिन। एक उसमें हसना क्या है, जितनी मुख्तर ज्यादा वक्त नहीं होगी आपका, वक्त हमारा खत्म है। तो यहाँ पे देखेंगे एक उसमें हसना जिससे परवरदिगार आलम फरमाता है कि अताअत करो खुदा की और रसूल की। जब खुदा और रसूल की अताअत करो तो देखो आपस में झगड़ो नहीं, कि अगर तुम इत्तेहाद पैदा नहीं करोगे, अगर तुम झगड़े में पड़ोगे तो क्या होगा, खुद कुरान बताता है। वला जनाता हूं यानी झगड़ो मत। मतलब शुरू अगर तुम झगड़ोगे तो बेअसर हो जाओगे, शर हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। और आज देखिए उस जमाने में ये कैफियत बहुत ज्यादा थी, मैं बड़ा, मैं साहिब हैसियत, मैं रसूल आए, इन जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत को एक प्लेटफॉर्म में जमा किया। आप मुझे बताइए बल्द रसूल में कौन सी शख्सियत नहीं, काली हो, गोरी हो, अरबी हो, अजमी हो, छोटी हो, बड़ी हो, ईरानी हो, तुरानी हो, जो भी हो, आप देखिए बल्द रसूल में जाकर इत्तेहाद का पता चलता है कि बल्द रसूल की वजह था। अजीजाने ग्रामी, अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो हम झगड़े में पड़ेंगे, झगड़े में पड़ेंगे तो हमारी बात बेअसर हो जाएगी, मादियात कब्जा कर लेंगी, जैसा आजकल हो रहा है, मादियात से आ जाए, मानवियात खत्म हो गई है और उसके बाद हमारी हवा बिगड़ जाएगी। कुरान फरमान हम कमजोर हो जाएंगे, हमारी हवा बिगड़ जाएगी, कपड़ों में हम बढ़ जाएंगे। और अजीजाने ग्रामी, उसके बाद एक कार्य हसना जो सीरत रसूल से हमें मिलता है वो सब हसना वस्फिर सब्र किया। सब हमारे अपने अंदर सब पैदा करें। जितना हम अपने अंदर सब पैदा करेंगे उतना हम रसूल के उस वचन नजदीक होते जाएंगे, उतना हम नजदीक चाहते चले जाएंगे। यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करती हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने नोट की थी कि 15 मिनट में आपके सामने बयान करूँ, मगर बहुत मात्र के साथ सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि एक गुजवा ऐसा ना जो है रसूल का वो क्या है, जुल्म के खिलाफ खामोश होते थे। न रसूल जुल्म को पसंद करते थे और ना जालिम। जहां भी दुनिया में जिस गोशे में जुल्म हो रहा है अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाइए किसी भी तरीके से, एक पैनी के जरिए, मगर पहुंचाइए कि अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो हम रसूल के मुद्दे से दूर होते चले जाएंगे। इस दुआ के साथ के परवरदिगार आलम जितनी भी तालीमात इस वक्त यहां पर जिक्र हुई है हमें उन तालीमात की सही मार्ग पर लगा करना और हमें तौफीक दे के हम उस पर सही तौर पर अमल कर सकें। तौफीक तो दी है परवरदिगार आलम ने, बस हमें सआदत दे दे कि हम इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक से इसी तरह प्रोग्राम करते रहे। इंशाल्लाह आप लोगों का कोऑपरेशन रहा तो सीरत सैयदतुल निसाए आलमीन पर भी हम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे और जितना हम इन किरदारों से नूरानियां हासिल कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। आखिर में आप सबका बेहद शुक्रिया TMS कमेटी की जानिब से और मैं उस कमेटी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतनी जहमत की और एक इस कदर खुशनूर और तालीम से भरा हुआ माहौल हमें फराहम किया और हमें आपस में बैठने का मौका दिया। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुस्लिमीन जहां 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 भी इस वक्त मुश्किल का शिकार है उन मुश्किल से निजात अदा फरमा दें। परवरदिगार आलम जहां कहीं भी इस वक्त दुश्मनान इस्लाम इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं उनकी प्लानिंग को नीस्तो नाबूद कर दें, उनकी तरफ पलटा दें। परवरदिगार आलम